सती पठान की साधना के शिविर का पांचवा दिन पूरा हुआ। साधना में निरंतरता बनी रही, संपजन्यं न रिंचति, अपनी ओर से यही प्रयत्न करते रहें कि कोई भी क्षण संप्रज्ञान से रिक्त न हो, हर क्षण संप्रज्ञान बने। सफल हो जाएंगे, पर काम शुरू करते ही सफल होंगे ऐसी आशा लेकर काम नहीं करना चाहिए। लक्ष्य यही होगा कि प्रतिक्षण संप्रज्ञान। पर जिस प्रकार लक्ष्य ये होता है कि चित्त अपने आलंबन पर ही लगा रहे, फिर भी भटक ही जाता है, पुराना स्वभाव है, भटक जाता है, हम उसे फिर ले आते हैं, भटक जाता है, फिर ले आते हैं, ऐसे ही संप्रज्ञान का काम करते करते भटक जाएगा, फिर ले आएंगे, भटक जाएगा, फिर ले आएंगे। यूं बड़े धीरज से, बड़े लगन से और अपनी ओर से प्रयत्नों की निरंतरता बनी रहे। संप्रज्ञान की निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रयत्न करना होगा और उस प्रयत्न की निरंतरता बनी रहे। ढीला छोड़ देंगे, अपने आप जैसे हो वैसे हो, हम क्या कर सकते हैं, मन का स्वभाव भागने का है तो काम नहीं होगा। मन का स्वभाव भागने का है ठीक, लेकिन हम अपने मन को बार बार संवेदनाओं पर लगाएंगे, संवेदनाओं के उत्पाद व्यय को जानेंगे, बैठे भी, खड़े भी, लेटे भी, चलते भी, खाते भी, पीते भी, हर अवस्था में, तो इस शिविर का लाभ जैसा मिलना चाहिए वैसा लाभ मिलेगा। सिद्धांतों के स्तर पर भगवान की अमृत वाणी को सुनते समझते हुए आगे बढ़ें। हर शाम की ये धर्मचर्चा भगवान की वाणी का पारायण करते हुए ही हो। हमने आनापान पर्व की व्याख्या की, इरियापथ पर्व की व्याख्या की, संप्रज्ञान पर्व की व्याख्या की, अब पटिकूल मनसिकार पब्बं। पहले तो मनसिकार पुरानी भाषा है, आज इस शब्द का प्रयोग नहीं होता, आज हम कहते हैं मनन करना, चिंतन करना, उसे पुरानी भाषा में मनसिकार कहते थे। मनसिकार यानी चिंतन मनन यानी संकल्प विकल्प, गलत तरीके से भी हो सकता है, अच्छे तरीके से भी हो सकता है। धर्म को समझते हुए, धर्म के अंग अंग पर, साधना की विधि पर अपने भीतर होने वाली सच्चाई को किस प्रकार देखें, इसको लेकर के जो संकल्प विकल्प होता है, जो चिंतन मनन होता है, वो ठीक, वो सम्यक संकल्पो प्रज्ञा का एक अंग है। चिंतन मनन से हमारे अंतर मन के गांठे नहीं खुलती, अंतर मन के विकार नहीं निकलते, ऊपर ऊपर की सफाई जरूर होती है, पर चिंतन मनन का, बुद्धि का अपना महत्व है, इतना महत्व है कि ऊपर ऊपर की सफाई होने लगती है और भीतर का काम कैसे करें ये बात समझ में आने लगती है, उसके लिए मार्गदर्शन मिलने लगता है। तो इस माने में चिंतन मनन का अपना महत्व है, संकल्प विकल्प का अपना महत्व है, सम्यक हो। तो उन दिनों की भाषा में एक और शब्द इस्तेमाल हुआ, योनिसो, ठीक, जो ठीक तरह का संकल्प है, ठीक तरह के चिंतन मनन है, उन्हें योनिसो मनसिकार कहा। और जो गलत तरीके हैं, गलत इस माने में कि जो हमको भटका देंगे, गलत रास्ते ले जाएंगे, हमें और उलझा देंगे, धर्म के रास्ते चलने में बाधक बन जाएंगे, विपश्यना करने में सहायक बनने के बजाय बाधक होंगे, तो उनको अयोनिसो मनसिकार। तो ये दो शब्द आज की भारत की भाषाओं में भुलाए गए, पर समझना चाहिए, योनिसो मनसिकार और अयोनिसो मनसिकार। यहां कहा गया पटिकूल मानसिकार, तो किस माने में? जो व्यक्ति बहुत ज्यादा काम वासना के विकारों में डूबा हुआ हो, बहुत ज्यादा डूबा हुआ हो, ये एक ऐसा विकार है जो अनेक जन्मों से बहुत गहराइयों के साथ प्राणियों के साथ चलता है। इसको निकलने में समय लगता है। कोई कोई इसमें इस कदर डूबा होता है कि जैसे ही ध्यान करने बैठे, काम संबंधी विकार ही उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का चिंतन। कोई पुरुष हो तो नारी का चिंतन, नारी हो तो पुरुष का चिंतन, ये बाधाएं आती ही रहती हैं। जिनको बहुत ज्यादा ऐसी बाधाएं आती हैं, तो बुद्ध तो आचार्यों के भी आचार्य और सर्वज्ञ होने के नाते समझ लेते थे कि इस व्यक्ति में ये सबसे बड़ी अड़चन है। तो जिस व्यक्ति की जैसी मनोस्थिति देखते थे, उसको उसी प्रकार काम आरंभ करने के लिए उस प्रकार का आलंबन दे देते थे। आगे जाकर के तो हर अवस्था में शुरू कहीं से करो, यहां से करो कि यहां से करो कि यहां से करो, कहीं से करो, पर चलते चलते इन स्टेशनों पर तो पहुंचना ही होगा और इनको पार करते करते अंतिम लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, बहुत आवश्यक है। लेकिन कहां से आरंभ कराया जाए? बहुत ही सुलझे मानस के लोग होते हैं, वो आनापान से काम आरंभ कर सकते हैं। जिनका बहुत अच्छा पुण्य होता है, अनेक जन्मों की पारमी अच्छी होती है, वो पहले ही आनापान से काम शुरू करते हैं तो बड़ा हल्का हो जाता, काम आसान हो जाता है। दो तीन दिन आनापान करते करते नासिका के इर्द गिर्द संप्रज्ञान जागने लगा, वेदना जागने लगी, उसका उत्पाद भी महसूस होने लगा, तो बस काम हल्का हो गया, विपश्यना का काम शुरू हो गया। जैसे यहां जागा वैसे सारे शरीर में जागा, काम हो गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, और उनके पास तो सब तरह के रोग आते थे। ये परंपरा, जिस परंपरा में हमें ये विद्या प्राप्त हुई और बांट रहे हैं, इस परंपरा में आनापान से काम शुरू करा के और सीधे विपश्यना की ओर संप्रज्ञान के साथ मोड़ दे करके विपश्यना का काम शुरू करा दिया जाता है। लेकिन कोई इस तरह का व्यक्ति हो कि वो कहे पता ही नहीं लगता मुझे सांस कब आया कब गया, जरा जोर से लेता हूं तो भी नहीं मालूम होता है, क्या करें, बैठता हूं तो मन में वासना के विकार यही है और कुछ नहीं, तो उसका चिंतन मनन तो जरा सा सुधरे। काम आरंभ करने के लिए अरे संप्रज्ञान की अभी देरी है भाई, अभी सती भी नहीं बराबर कर सकता, शरीर के बारे में सजग रहने का काम भी नहीं कर सकता, तो जरा सी मूड देवे इसके चिंतन को, जो काम वासना के अनुकूल ही अनुकूल चिंतन चल रहा है, उसे काम वासना के प्रतिकूल कैसे करें? जो शरीर के सौंदर्य के चिंतन के अनुकूल ही अनुकूल चल रहा है, उसको शरीर के सौंदर्य में कुछ नहीं रखा ऐसा चिंतन कराते हुए शरीर के सौंदर्य के प्रतिकूल चिंतन कराना कैसे सिखाएं? तो जब बात चिंतन से शुरू होती है तो अनेक विधियां हैं कि जब मन में बहुत बड़ा विकार जागे तो ऐसा कोई चिंतन करने लगो जो उसके ऊपर बहुत अच्छा लेप लगा दे। ये परंपराएं भारत में भगवान के पहले भी रही, बाद में भी रही, आज भी हैं। मानस को एक मोड़ दे दो, किसी अच्छी बात पर मोड़ दे दो, उसी का चिंतन करता जाएगा, तो जो विकारों वाला चिंतन था वो अपने आप दब जाएगा। बात तो यही है कि अपने संकल्प विकल्प को कोई और अच्छी मोड़ दो। लेकिन इस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति चाहे पहला कदम हो चाहे कोई सा कदम हो, सत्य से अलग नहीं होगा। तो मोड़ देना है चिंतन को तो सच्चाई के आधार पर हो, किसी दार्शनिक काल्पनिक मान्यता के आधार पर न हो। वो हो जाएगी तो फिर उस लेप को तोड़ने में बड़ी कठिनाई होगी, आगे जाकर बड़ी बाधा पैदा कर देगा। यही काम जो हमको काम वासना के अनुकूल चिंतन चल रहा था उसको तोड़ने के लिए हमने उसे और कोई चिंतन दे दिया, काम वासना के अनुकूल जो चिंतन चल रहा था वो रुका, अच्छा हुआ, लेकिन जो दूसरा दे दिया वो गलत दे दिया, इसलिए उसके लेप लगते 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 इतने कड़े हो गए, उन लेपों को उतारना आगे जाकर कठिनाई हो जाएगी। तो इस रास्ते चलने वाला व्यक्ति सच्चाई की बात कि देख जिसे तो सुंदर कह रहा है, शरीर बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर है, बार बार यही आता है, या तो अपने शरीर का चिंतन देख मैं कितना सुंदर हूं, कितना आकर्षक हूं, अथवा जिसके प्रति काम वासना जागी है उसके प्रति वो कितना सुंदर है, वो कितनी सुंदरी है, उसका देह कैसे, उसका शरीर कैसे, इत्यादि इत्यादि यही चिंतन चलते हैं। तो तू किसको सुंदर मानता है रे, देख तो सही, ये ऊपर ऊपर की बात को तूने सुंदर मान लिया, ये तो प्रकट सत्य है, भासमान सत्य है, इसका अंतिम सत्य तक तो अभी पहुंचने लायक तो नहीं हुआ, लेकिन और जरा भीतर समझ तो सही, भीतर क्या है, जिस चमड़ी को तो बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, अरे उसे जरा चीर के देख क्या है भीतर, क्या है भीतर, इसका चिंतन कर। ये चाम की खोल से ढकी हुई ये शरीर, इसके भीतर क्या है, हड्डियों का ढांचा है, मांस है, खून है, लहू है, पीप है, पेशाब है, पखाना है, अरे गंदगी ही गंदगी है। तो सत्य है, चिंतन इस गंदगी का करना, वासनाओं से प्रतिकूल चिंतन शुरू हो गया, वासनाओं के अनुकूल चिंतन चल रहा था उसे वासनाओं के प्रतिकूल चिंतन शुरू करवाया, लेकिन झूठ का आधार नहीं दिया। कैसा कोई आलंबन दे देते कि ये सारा शरीर नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, देख इसमें कोई आत्मा बैठी है, कोई परमात्मा है जो सब में व्याप्त है, वो तुझ में भी व्याप्त, अब बेचारा करेगा कल्पना तो भूल जाएगा उस काम वासना को, इस काम में लग गया कठिनाई खड़ी हो जाएगी ना। हमें काम वासना के अनुकूल विचारधारा को काम वासना के प्रतिकूल करने के लिए सच्चाई का आलंबन, और यही सच्चाई का आलंबन है जिसे समझना है, क्या है। पुनच परंग भिक्खवे भिक्खु इममेव कायं, ये जो काया है इसमें उद्धंग पाद तला, पांव के तलवे से ऊपर की ओर, उद्धंग पाद तला अधो के समत्थका, और ये केश वाला सिर इससे नीचे की ओर, तच पर्यंतं, त्वचा ही त्वचा से ढका हुआ, सारी त्वचा की सीमाओं तक जो ये शरीर की परिधि है, पूरं नान प्रकारस्य अशुचिनो पच्छवेक्खति, उसमें अशुचि ही अशुचि, अशुचि अशुद्धि को कहे, शौच शुद्धि को कहते हैं, शुचि शुद्धि को कहते हैं, अशुद्ध लेकिन पुरानी भाषा में गंदगी ही गंदगी, अशुद्ध है तो गंदगी है। इसके भीतर देख तो त्वचा से ढकी हुई इस सारी काया के भीतर गंदगी ही गंदगी, गंदगी ही गंदगी, क्या गंदगी। अथि इमस्मिन काये, इस काया में क्या है, तो पहले ऊपर ऊपर की क्या है देखें, केसा लोमा नखा दंता तचो, केश है, लोम है, नख है, दांत है, त्वचा है, ये ऊपर ऊपर की पांच गंदगी। जब तक ये जुड़े हुए हैं तब लगता है खूबसूरत है, जरा भी एक एक को भी अलग कर करके देखें सच्चाई सामने आ जाएगी, गंदगी ही गंदगी है। ये भासमान सत्य है, यूं प्रतीत होता है कि ये बहुत खूबसूरत, ये बहुत खूबसूरत, जो धोखे की बात है, भ्रांति की बात है, विपर्यास की बात है। इसी को अलग कर करके देखें तो पता लगे कहीं खूबसूरती का नामो निशान नहीं है, केवल गंदगी ही गंदगी, गंदगी ही गंदगी। और आगे बढ़े तो भीतर मनसंग नारू अट्ठी अट्ठिमिज्ञंग पक्कंग हदयंग यकनंग किलोमकंग पिहकंग फफ्फासंग अंतंग अंतगुणंग उदरियंग करीसंग पित्तंग सिंहंग पुब्बो लोहितंग सेदो मेदो अस्सु वसा खेलो सिंघानिका लसिका मुत्तंती। बस ये सारी की सारी गंदगियां ही गंदगियां भरी पड़ी हैं। एक चीज इनमें ऐसी नहीं है जिसको कहें ये तो बड़ी खूबसूरत है, ये तो बड़ी सुंदर है। भीतर से देखना शुरू करें एक एक को, एक एक को, एक एक को, सिवाय गंदगी के और कुछ नहीं, तो क्या करेगा? अभी देख नहीं पाया है वो भीतर, ये विपश्यना नहीं है। प्रारंभ कैसे करे ऐसे व्यक्ति को जो क्षण भर भी अपने चित्त को यथार्थ पर नहीं टिका सकता, उसका चिंतन गलत ही गलत तरीके पर चल रहा है, तो उसे सही तरीके का चिंतन देने के लिए जिन वासनाओं के अनुकूल उसका चिंतन चल रहा है, उन वासनाओं के प्रतिकूल और सत्य के आधार पर प्रतिकूल चिंतन देने के लिए यही किया और यह कारगर हुआ। अनेक लोग भगवान के जीवन काल में इस तरह की साधना का प्रयोग उन पर किया गया और उसका बड़ा कल्याणकारी परिणाम आया। जब चिंतन ही ठीक नहीं होगा तो मन स्थिर नहीं होगा, मन स्थिर नहीं होगा तो मोटी से मोटी भी यथार्थ सच्चाई को नहीं देख पाएगा, स्थूल सांस को भी नहीं देख पाएगा, सूक्ष्म सांस को देखना तो दूर रहा, और उसके बाद संवेदना को देख के उदय व्यय का ज्ञान पैदा कर लेना तो और दूर रहा। इसलिए चिंतन को इस प्रकार मोड़ देने का काम किया गया और समझाया इसे, से यथापि भिक्खवे उभतो मुखा पुतोली पूरा नाना विहितस्य धन्यस्य। बोरे होते हैं जैसे हैसियन के बोरे हों, दोनों ओर से मुंह खुला है और उसे अनाज से भरा है और भिन्न भिन्न प्रकार के अनाज से भरा है उन बोरों को, तो किस तरह का अनाज? मानसालीनंग बीहीनंग मुग्गानंग मासानंग तिलानंग तंडुलानंग, चावल हो गेहूं हो तिल हो इत्यादि, उड़द हो इत्यादि इत्यादि भरे पड़े हैं। तो तमेनंग चक्षुमा पुरिशो, उसको बोरे को खोल करके मुंचित्वा उसे देखता है आंख वाला आदमी, जब उसे देखता है पच्चवेक्खेय दिखता है, इमे साली ये देख ये साली है, ये वीही है, इमे मुग्गा इमे मासा इमे तिला इमे तो ये अनाज है, ये अनाज है, ये तिलहन है, ये अनाज है, यूं सबको उसके पास आंख है जानता है, इस तरह से देखता है। ठीक इसी प्रकार एवमेव खो भिक्खवे भिक्खु इममेव कायं उद्धंग पादतला अधो के समत्थका तच्च पर्यंतं पूरं नाना प्रकारस्य ऐसुचिनो पच्चवेक्खति। इसी प्रकार भीतर गंदगी को अलग अलग करके देखता है, अलग अलग करके देखता है। अत्थि इमस्मिं काये केशा लोमा इत्यादि। तो पहले तो क्या देखता है? चिंतन ही करता है, चिंतन ही करता है। देख तो भीतर, भीतर हड्डियों का ढांचा होगा और क्या होगा? हड्डियों का ढांचा है, मांस है, लहू है, नसों का जाल है, पीप है, पखाना है, कफ है, पित्त है, अरे यही सब तो और है क्या? यूं अलग 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 करके उस पर चिंतन करता है। एक अवस्था आगे जा करके आती है कि अभी विपश्यना नहीं शुरू हुई, ये जो चिंतन है, चिंतन के आधार पर चित्त की एकाग्रता प्राप्त होने लगती है। जितने भी आलंबन है, उन दिनों 40 प्रकार के आलंबनों का प्रयोग किया जाता था, जितने भी आलंबन हैं चित्त को एकाग्र करने के मार्ग की ओर ले जाएंगे तो समाधियां प्राप्त होंगी। उन दिनों की भाषा में उन्हें ध्यान कहते थे, ध्यान कहते थे। पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान, और इसी प्रकार पांचवा, छठा, सातवां, आठवां ध्यान। तो उस समय के भारत में जो ये प्रचलित ध्यान थे उनमें विपश्यना नहीं थी, उसमें संप्रज्ञान नहीं था, और उन आठों ध्यान में पारंगत परफेक्ट हो जाने के बावजूद भी एक व्यक्ति अपने विकारों की जड़ें नहीं निकाल पाता। बहुत सफाई होती है इन ध्यानों में भी, बहुत सफाई होती है, लेकिन सफाई करते 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 बात रुक जाती है। अंतर मन की गहराइयों में जो अनुशय क्लेश हैं, सोए हुए क्लेश हैं, जड़ें हैं, वो अनेक जन्मों से साथ साथ चल रही हैं। इतने गहरे विकार पत्थर की लकीर वाले जो नया नया भाव देने वाले हैं, वो दबे ही रह गए। वो दबे ही रह गए तो मुक्त अवस्था नहीं प्राप्त हुई। उनको निकालने के लिए ही खोज करते 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 इस महापुरुष ने ये संप्रज्ञान की खोज की, विपश्यना की खोज की, संवेदनाओं के आधार पर उदय व्यय को देखने का काम इसकी खोज की, और ये संवेदनाओं के आधार पर सच्चाई को देखकर उसके उदय व्यय को देखना अंतर मन की गहराइयों तक पहुंच जाना है। क्योंकि ये बात बहुत स्पष्ट हर किसी को हो जाती है कि हमारा अंतर मन, भीतर वाला मन, गहराइयों वाला मन प्रतिक्षण शरीर के संवेदनाओं के साथ जुड़ा रहता है। रात दिन हम सोए हों, जागे हों, चलते हों, फिरते हों, खाते हों, पीते हों, हर अवस्था में हमारा अंतर मन शरीर की संवेदनाओं के साथ जुड़ा रहता है, शरीर की संवेदनाओं को अनुभव करते रहता है, और अनुभव करके स्वभाव ऐसा बना लिया उसने कि जहां ये संवेदनाएं उसे सुखद लगी वहीं तुरंत राग जगाया, जहां उसे दुखद लगी वहीं द्वेष जगाया। तो ये उसका अपना एक दृढ़ स्वभाव हो गया और वो स्वभाव कायम है। और हम ऊपर से अपनी सफाई कर रहे हैं और सफाई करते करते पहले ध्यान पर आए, दूसरे पर आए, यूं आठों ध्यान कर लिया, बहुत सफाई हुई। लेकिन वो अंतर मन के हिस्से का, जो अंतर मन का हिस्सा है, सफाई हुई, कुछ गहराई पर भी गई। जैसे जैसे आगे ध्यानों पर जाएंगे कुछ गहराई पर भी गई, कुछ गहराई पर एक जगह आके अटक गई, क्योंकि संवेदनाओं के आधार पर काम नहीं किया तो अंतर मन तक पहुंच नहीं हुई। अंतर मन तक पहुंच नहीं हुई तो उसका वही स्वभाव है, भले अरूप ब्रह्मलोक में जन्म गया आठों ध्यान की वजह से, भवाग्र में जन्म हो गया और बहुत कल्पों तक उस भवाग्र में स्थित रहता है, कायम रहता है और बड़ा सुख, बड़ा आनंद भोगता है, बड़ी शांति भोगता है, पर अंतर मन का स्वभाव नहीं गया। तो इन ध्यानों की वजह से जो ये लोक मिले, अच्छे लोक मिले, रूप ब्रह्मलोक मिला कि अरूप ब्रह्मलोक मिला, ये इन लोकों में भी एक से एक ऊंचा, एक से एक ऊंचा मिलता चला गया। तो अपने इस ध्यान के सत्कर्म का फल मिला, उसकी अपनी सीमा है। इतने कल्पों तक अमुक ब्रह्मलोक का जीवन मिल गया तो ये जो ध्यान किया था उसका फल मिल गया। फिर मानव भवाग्र तक भी पहुंच गया, फिर क्या हुआ? बहुत लंबे समय तक, अनेक कल्पों तक वहां सुख शांति का भोगता रहा, फिर क्या हुआ? जैसे ही उसकी अवधि पूरी हुई तो अंतर मन में जो क्लेश इकट्ठे कर रखे हैं, अभी जो कर्म संस्कार उनकी जड़ें अभी कायम है, जब मृत्यु का समय आता है उनमें से कोई अपना सिर उठाएगा। और अब कौन सा सिर उठाएगा? नीचे लोक का ही उठाएगा, क्योंकि ऊपर से ऊंचे लोक का तो भोग लिया उसने, अब रह क्या गया? ऐसा ही रह गया जो नीचे की ओर ले जाएगा। बड़ी पीड़ा होती है। जितने ज्यादा सुखद लोक का जीवन व्यक्ति जीता है उतना ही मृत्यु के समय इतनी असह्य पीड़ा होती है, क्योंकि इस भ्रम में रहता है, कल्पों पर कल्प निकल जाते हैं तो इस भ्रम में रहता है, मैं अमर हूं, मैं अमर हूं। देखो मेरे सामने इस संसार के प्राणी जन्म लेते हैं, मरते हैं, अरे और नीचे लोगों का तो कहना है क्या, मनुष्य लोक के भी जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, अरे मनुष्य लोक का तो कहना है कि ये देवलोक वाले भी देखो जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, और अरूप ब्रह्म वाला होगा तो देखिएगा, अरे रूप ब्रह्म वाले भी जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, भले अनेक कल्पों के। मैं नहीं मरता, मैं नहीं मरता, तो मैं अमर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अमर हूँ के नशे में, इसकी अविद्या में, इसके अज्ञान में इतने कल्प बिताए और अब मृत्यु का क्षण आया तो मुरझाने लगा स्वभाव उसका, जरा धर्म है प्राणी का, मुरझाने लगा, मुरझाने लगा, मृत्यु सामने दिखने लगी, बड़ी भयंकर पीड़ा होती है और गिरा फिर इसी तरह से भाव चक्र में और यही चलता रहा, यही चलता रहा। आठों ध्यान प्राप्त करके इस व्यक्ति ने यही देखा कि अगर कोई न कोई भव का बीज कायम है, मैं अपने को मुक्त मानने को तैयार नहीं, मैं मुक्त नहीं हुआ। जब तक भव बीज कायम है तब तक भव चक्र चलेगा। अभी भव बीज कायम है अंतर्मन की गहराइयों तक, तो अंतर्मन की गहराइयों तक इन भव बीजों को निकालने के लिए क्या किया जाए? तो खोजते खोजते अन्य अनेक प्रकार की साधना प्रणालियों का प्रयोग करते करते इस अवस्था पर पहुंच गया कि इन संवेदनाओं के सहारे अनित्य बोध जगाओ। इन संवेदनाओं का हमारी इन गहराई वाले मन से गहरा संबंध है और इसके सहारे इसको अनित्य है अनित्य है ऐसा देखते हुए देखेंगे उसका निष्कासन हुए जा रहा है, उभरता है, नष्ट होता है, उभरता है, यूँ होते होते मुक्त हो गया। तो एक विद्या मिल गई, लोगों को बांटनी शुरू की। इसके पूर्व ये सारे के सारे आलंबन चलते थे उन आठों ध्यानों में, जिनके साथ संप्रज्ञान नहीं जोड़ा गया, जिनके साथ विपश्यना नहीं जोड़ी गई। ये ध्यान तो भारत में कायम थे। ये व्यक्ति भी बुद्ध बनने के पहले किसी अन्य आचार्य के पास जाकर के सातवां ध्यान सीखा, किसी अन्य आचार्य के पास जाके आठवां ध्यान सीखा, मुक्त नहीं हुआ। मुक्त नहीं हुआ क्योंकि उसके साथ संप्रज्ञान नहीं जुड़ा था, क्योंकि उसके साथ विपश्यना नहीं जुड़ी थी। यही आलंबन हमको आठों ध्यान तक ले जा सकते हैं। तो सांस का भी काम शुरू किया तो केवल सांस को ही देखता चला जाएगा, उसको संवेदना से कोई लेन देन नहीं है। केवल सांस को देखते 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 चित्त एकाग्र होते 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 प्रथम ध्यान की डुबकी लग जाएगी, द्वितीय ध्यान की लग जाएगी, तृतीय ध्यान की लग जाएगी, चतुर्थ ध्यान की लग जाएगी। उसके बाद के तो अलग आलंबन है, लेकिन चौथे ध्यान तक पहुंच गया केवल सांस के सहारे सहारे। ऐसे ही हर किसी आलंबन से बहुत तरह के आलंबन होते हैं। यूं ही एक कल्पना करेगा, ये सारा शरीर मेरा केवल हड्डी है, केवल मांस है, केवल हड्डी है, केवल मांस है, त्वचा है, अमुक है, अमुक है, काल्पनिक आलंबन है। पर बार 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 उसी काल्पनिक आलंबन पर मन टिकाते 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 चित्त एकाग्र होने लगा, एकाग्र होने लगा। उसी को समाधि कहते हैं, उसी को ध्यान कहते हैं। उसको नहीं मिली विपश्यना, उसको उदय व्यय का कहीं बोध नहीं हुआ, लग गया उसी में। और लगते लगते पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान, ये इसी तरह से जितने आलंबन है, 40 आलंबन उन दिनों होते थे, 40 में से किसी आलंबन को पकड़ लो और उसके सहारे 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 चौथे ध्यान तक पहुंच जाओ। और चौथे ध्यान के बाद अपने अपना तरीका है, आठों ध्यान तक पहुंच जाओ। विपश्यना नहीं मिली, लेकिन चौथे ध्यान तक पहुंचते पहुंचते सिद्धियां आनी शुरू हो गई। अनेक सिद्धियां आती हैं। एक सिद्धि आती है, दिव्य चक्षु प्राप्त होता है। विपश्यना करते हुए चित्त को निर्मल करते हुए भी सिद्धियां आती हैं, और विपश्यना न करके केवल ध्यानों का काम करे, समाधियों का काम करे, तो भी सिद्धियां आती हैं। केवल एक सिद्धि है जो केवल विपश्यना से ही आएगी, और बाकी सिद्धियां आती हैं जो विपश्यना से ही आएगी। वो क्या? कि वो अरहंत अवस्था पर पहुंच करके मेरा चित्त आश्रमों से क्षीण हो गया, इसका साक्षात्कार कर लेगा। इसका साक्षात्कार समाधियों में गया हुआ व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि आश्रमों से क्षीण हुआ नहीं ना, तो कैसे करेगा? वो जब देखेगा तो लगेगा, हाँ कुछ हैं, ये तो रहते ही हैं, ये तो रहते हैं, इसके रहते भी अमर हो सकता है। ले अनेक लोग अमर हुए ना, ब्रह्मलोक में चले गए तो अमर हो गए। बहुत समय तक तो भारत की अध्यात्म में ये मान्यता चली कि जो देवलोक में चला गया सो अमर हो गया। तो बहुत दिनों तक देवलोक को अमरलोक है, अमरलोक है, यूं ही मानते गए। ये मृत्युलोक है और देवताओं का अमरलोक है। फिर धीरे धीरे साधनाएं बढ़ी तो देखा, अरे जो देवलोक के लोग हैं वो भी समय पा के मर जाते हैं, मृत्यु है भाई, अमर नहीं है। तो और साधनाएं बढ़ी तो ब्रह्मलोक, ब्रह्म तो अमर है, ब्रह्मलोक के प्राणी तो अमर हैं। और साधनाएं बढ़ी तो ये रूप ब्रह्मलोक के प्राणी तो मरते हैं। तो और साधनाएं बढ़ी तो अरूप ब्रह्मलोक, ये नहीं मरते, ये अमर हैं। इस प्रकार अमर हैं, अमर हैं, अमर हैं के का नशा चलता गया, क्योंकि पूरी जानकारी, सारे के सारे लोकों की जानकारी वही कर सकता है जो लोकों के परे चला गया। लोकों के परे की अवस्था का अनुभव नहीं हुआ, लोकीय क्षेत्र का ये अनुभव हो रहा है, तो भ्रांतियां ही भ्रांतियां हैं, पूरी जानकारी नहीं है। अधूरी जानकारी में हर तरह के दर्शन खड़े होते हैं, मान्यताएं खड़ी होती हैं, उलझन खड़ी होती हैं। तो जब केवल इसी का काम करता रहे, विपश्यना से करे, बहुत अच्छी बात। अभी विपश्यना पे नहीं भी गया, ऐसे भी लोग जो इसी का ध्यान करते हैं कि मेरे शरीर में केवल हड्डी है मांस है, ये है वो, शिविरों में कहने आते हैं लोग, कई उनको ध्यान करवाते नहीं, लेकिन फिर भी बाह्य प्रक्षेपण होने लगता है। अनेक लोग आते हैं, मुझे तो अपने शरीर का नर कंकाल दिखने लगा, क्या करूं? अरे दिखने लगा छोड़, संवेदना क्या होती है उसे देख। मुझे भीतर मांस के टुकड़े दिखने लगे, टूट टूट के गिर रहे हैं, मैं क्या करूं? छोड़, क्योंकि वो आलंबन आवश्यक नहीं उस व्यक्ति को जिसको विपश्यना मिल गई। आरंभ के लिए वो आलंबन आवश्यक है, विपश्यना नहीं मिली, केवल उसी आलंबन से काम करता गया तो ये एक सिद्धि प्राप्त होती है, दिव्य ज्योति दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। तो जो बात सामान्य आंखों से लोग नहीं देख सकते वो देखने लगता है। तो उसके लिए ये बात कही गई कि ऐसी अवस्था पर भी पहुंच जाएगा जैसे बोरे में अनाज रखा है, उसका मुंह खुला है, मुंह खुला है तो आंख वाला आदमी देख के कही देगा कि ये तो चावल है, ये तो गेहूं है, ये तो उड़द है, ये तो तिल है, क्या तकलीफ उसे, बड़े जाने से कह देगा, क्या कठिनाई उसे। ठीक इसी प्रकार अपने भीतर देखेगा, ये हड्डी है, ये मांस है, ये अमुक है, ये अमुक है। जब तक उस अवस्था पर नहीं पहुंचा तब तो यही है कि वो कल्पना करेगा, मान्यता के आधार पर चिंतन करेगा, भीतर हड्डी ही है ना, किसी मुर्दे को देखा है, हड्डी है ना भीतर, मांस है ना, शरीर चिरा गया तो मांस दिखता है अंदर, और खून है और ये है, पेशाब होता है, ये पखाना है, ये कफ है, ये थूक है, इत्यादि इत्यादि, यूं चिंतन चलता है। साधना करते हुए उसको किसी प्रकार भी अपने चिंतन की धारा जो वासनाओं के अनुकूल थी उसे वासनाओं के प्रतिकूल करने के लिए ये काम कराया जाता है, ताकि बजाय इसके कि ये बहुत खूबसूरत है, ये देह बहुत खूबसूरत है, अपनी या पराई, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, अब चिंतन करने लगे, अरे क्या खूबसूरत है भाई, चीर चीर के देखना क्या पड़ा है उसमें, तो भले कल्पना ही कर रहा है, चिंतन ही कर रहा है, पर यूं चिंतन करते करते पहुंचेगा कहां, ये करते करते इति अज्जतंग, फिर आ गया उसी पर, इति अज्जतंग वा काये कायानुपस्य, अनुपस्ना शुरू हो गई, इति अज्जतंग वा काये कायानुपस्सि विहरति, बहिद्धा वा काये कायानुपस्सि विहरति, अज्जत बहिद्धा वा काये कायानुपस्सि विहरति, भीतर बाहर अनुपस्ना करने लगा। अब उसका रूप और आकृति छूटती चली गई, वो तो आरंभिक प्रारंभिक बात थी, अब रास्ते पर आ गया, गाड़ी पटरी पर आ गई, अब सीधी पटरी पर आ गई तो चलेगी अपनी मुक्ति के मार्ग पर, अब ये स्टेशनी आनी शुरू हो गई, भीतर बाहर दोनों जगह। और इसी तरह समुदाय धम्मानुपस्सी वा कायस्मिं विहरति, वै धम्मानुपस्सी वा कायस्मिं विहरति, समुदाय देखता वेदनाओं का अनुभव होने लगा, विपश्यना करने लगा, तो देखिए अनुभव हुआ, समुदाय हुआ, ये व्यय हुआ, ये समुदाय हुआ, ये व्यय हुआ, और यूं देखते देखते उस अवस्था पर पहुंच जाता है जहां समुदाय वै धम्मानुपस्सी वा कायस्मिं, इन्हीं स्टेशनों पर से गुजरना पड़ेगा, काम चाहे जहां शुरू कर दे। कायोति, ये काया है, अब समझ गया अच्छी तरह से, अरे ये काया है, इसे कैसे कहें कि ये सुंदर है या असुंदर है, काया है, परमाणु का पुंज है केवल, जिसमें उत्पाद व्यय होता है, न नारी है न पुरुष है, न मैं हूं न तू है, केवल काया है, परमाणुओं का पुंज है। अत्थ कायाति वा पनस्स सती पच्चुपट्ठिता होती, अब उसकी सजगता बस काया है इसी बात पर प्रतिष्ठित हो गई, और इस बात पर प्रतिष्ठित होकर के यावदेव ज्ञानमत्ताय पटिस्सतिमत्ताय, जब तक कि केवल दर्शन केवल ज्ञान केवल दर्शन केवल ज्ञान की अवस्था पर नहीं पहुंचा, तब तक यही करता गया, फिर अनिश्चितो च विहरति, अब कोई आलंबन नहीं रह गया, निरालंब में पहुंच गया, कोई आधार कोई पकड़ जिसकी वजह से भाव चक्र चले ऐसा रह नहीं गया। नचे किंच लोके उपादीयति, अब उपादान के लिए पकड़ के लिए आसक्ति के लिए कोई आलंबन ही नहीं रह गया, ऐसी अवस्था में पहुंचा, यूं इन्हीं स्टेशनों पर से गुजरते 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 मुक्त अवस्था पर जा पहुंचा। इसी प्रकार धातु मनसिकार पब्बं, फिर मनसिकार ही है, अब तक केवल जानाती पजानाती, ये ऐसे व्यक्ति के लिए जो प्रज्ञा पूर्वक नहीं जान पाए तो करे क्या, इसलिए उसको केवल चिंतन के स्तर पर धर्म सिखाया गया, लेकिन वो केवल प्रारंभिक कदम है, तो किसी को यूं सिखाया गया कि भीतर क्या है, हड्डी है, मांस है इत्यादि, किसी को ये समझाया गया। पुनच परंग भिक्खवे भिक्खु इममेव कायं, इस काया में यथा ठितं यथा पणिहितं धातुसो प पच्चवेक्षति, धातु ही धातु सब जगह दिखती है। अत्थि इमस्मिन् काये पृथ्वी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, ते ये चार धातु, ये चार महाभूत। अरे यही है केवल, इसमें ये केवल चिंतन शुरू किया, केवल यही है। समझाया गया क्या पृथ्वी धातु होती है, जो ठोस है वो पृथ्वी धातु है। तो तेरे भीतर हड्डी वड्डी है ना, ठोस है ना, ये पृथ्वी धातु है। क्या जल धातु होती है, जिसमें प्रवाह होता है, बहाव होता है। तो तेरे भीतर देखिए खून बहता है, तो जल धातु हुई ना। क्या वायु धातु होती है, कि जिसमें गैस वगैरह हो, तो अंदर तेरे गैसेस वगैरह है ना, है ना। तो देख ये वायु धातु है। अग्नि धातु है, गर्मी है, सर्दी है, ये जो पाचन का काम हो रहा है, तेरे भोजन की पाचन क्रिया चल रही है, अग्नि धातु है ना। यूं ये समझ करके बार बार चिंतन करता है कि पृथ्वी है, अग्नि है, जल है, वायु है, और क्या है, जिसको बड़ा सुंदर कहता हूं, क्या है इसमें, पृथ्वी है, अग्नि है, जल है, वायु है। इस तरह का चिंतन करते करते बहुत स्पष्ट लगने लगता है कि सचमुच देख हड्डियां है, और क्या है, हड्डियां है, और यह तरल है, या ये वायव्य है, और या ये गर्मी है, यही तो है, पाचन क्रिया हो रही है, यूं होने लगता है। तो उसका उदाहरण देकर के समझाया। उदाहरणों से बात समझाते हैं, जैसे आनापान के बाद समझाते हुए उदाहरणों से समझाए कि कोई एक सुतार है जो खराद का काम करता है, लकड़ी को गोल घुमा के काटता है, तो किस तरह से लंबी काटता है, ऊंची काटता है, तो सांस लंबा है, ऊंचा है। वैसे ही उदाहरण से समझाया कि बोरी में अनाज है, तो ये अनाज है कि ये अनाज है, तो हमारे शरीर के भीतर के ये सारे अवयव किस प्रकार के हैं, ऐसा उसमें समझाया गया। ठीक इसी प्रकार ये उदाहरण देकर के समझाया कि दक्खो गो घातको वा गो घातक कंते वासी वा गाविंग बधित्वा। कोई एक कसाई, कसाई लोग गायों को पशुओं को मार करके उसका मांस बेचते हैं, यही उनका धंधा है। तो कोई कसाई या उसका कसाई का कोई अच्छा शिष्य जो कि इस काम में माहिर हो गया, वो क्या करता है, उसका वध करके चथु महापथे चौरस्ते पर अपनी दुकान खोल करके बिलसो विभजित्वा निसिन्नो अस्य बैठता है, उस मांस को रख करके लोगों को बेचने के लिए। एवमेव खो भिक्खवे भिक्खु इममेव कायं यथाठितं यथापणिहितं धातुसु पच्चवेक्षति। अब उसके लिए केवल मांस के लोथड़े हैं, ये शरीर की अमुक अंग का मांस का लोथड़ा है, अमुक अंग, उसके लिए वो संपूर्ण गाय नहीं है, टुकड़े टुकड़े कर लिए उसने, बेच रहा है वो कसाई के लिए अब गाय का कोई रूप नहीं रह गया, उसके लिए वो मांस के लोथड़े रह गए जो कि वो बेच रहा है, हड्डियों से जुड़े हैं, मांस है, इसको बेच रहा है। ऐसे ही अपने भीतर ये शरीर है और ये सुंदर है, ये मेरा है, ये उसका है, ये सारा भाव टुकड़े कर करके अंदर चल रही है, केवल कल्पना ही अभी चल रहा है, केवल चिंतन ही अभी। लेकिन चिंतन जो हमें काम विकारों के अनुकूल चल रहा था, उसके प्रतिकूल चलने के लिए इस तरह का आलंबन दिया, तो उसके द्वारा देखता है अत्थि इमस्मिन् काये पृथ्वी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, ति। लेकिन यही बात नहीं खत्म हुई, अगर यही बात खत्म हो जाती तो हो सकता है प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, चित्त एकाग्र हो जाता किसी एक चिंतन पर, चिंतन पर एकाग्र करते 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 ध्यानों की अवस्थाएं क्या मालूम प्राप्त कर लेता, मुक्ति की अवस्था नहीं प्राप्त करता, मुक्ति की अवस्था प्राप्त करानी है तो अनुभव होना चाहिए, इन धातुओं का भी अनुभव होना चाहिए। पृथ्वी धातु है, हमें अनुभव हो पृथ्वी धातु है, पृथ्वी धातु का स्वभाव है, फैलती है, आकाश को घेर लेती है, आकाश से घिर जाती है, तो वजन होता है, भारी होती है, हल्की होती है, खुरदरी होती है, चिकनी होती है, ये पृथ्वी धातु का स्वभाव है। तो अपने आप भीतर अनुभव होने लगा, कहीं भारीपन है, कहीं हल्कापन है, ये नन्ना सा नन्ना परमाणु कण जिसमें ये चारों धातु समाई हुई हैं, पृथ्वी धातु की प्रधानता लिए हुए अनेक परमाणु कण उत्पन्न हुए, तो देख भारी सा लगने लगा, हल्का सा लगने लगा। अग्नि धातु की प्रधानता लिए हुए अनेक परमाणु उत्पन्न हुए, तो गर्मी से लगने लगी, सर्दी से लगने लगी, तापमान महसूस होने लगा। वायु धातु की प्रधानता लिए हुए आए तो हलन चलन महसूस होने लगी। जल धातु की प्रधानता लिए हुए आए तो एक संयोजन का मॉइस्चर है, बांधने का काम करता है, सब कुछ जुड़ा हुआ है, यूं महसूस होने लगा, अनुभव होने लगा, संवेदनाएं अनुभव होने लगी, बस संप्रज्ञान मिल गया। बात यह कि जब तक संप्रज्ञान नहीं जुड़ता तब तक हमको ध्यानों की ओर ले जाएगी साधना, हमें विपश्यना की ओर नहीं ले जाएगी, मुक्ति की ओर नहीं ले जाएगी। जड़ों तक जो हमारे विकार हैं उन विकारों को जड़ों से बाहर निकालने का काम नहीं कर पाएगी। यही सबसे बड़ी देन होती है एक मुक्त पुरुष की, कि वो जड़ों से निकाल करके स्वयं मुक्त हुआ है तो जड़ों से निकालने की विद्या सिखाता है। और ये काम करते करते भी उसी तरह से उन्हीं स्टेशनों पर से अब गुजरना होगा। अज्जत तंगवा काये कायानुपस्सी बिहरती, भीतर की ओर, और बहिद्धा वा काये कायानुपस्सी बिहरती, बाहर की ओर, और अज्जत बहिद्धा वा बाहर भीतर सर्वत्र काये कायानुपस्सी बिहरती, और फिर समुदय धम्मानुपस्सी वा कायस्मिं बिहरती, वै धम्मानुपस्सी वा कायस्मिं बिहरती, समुदय वै धम्मानुपस्सी वा कायस्मिं बिहरती। इन सारों में से गुजरते हुए उस अवस्था पर पहुंचता है अथि कायोति, काया है, बस काया है। आरोपण नहीं करता, इस काया पर देखिए आत्मा है, इस काया पर देखिए मैं हूं, इस काया पर देखिए मेरा, अन्यथा आगे नहीं बढ़ पाएगा, बीच की धर्मशाला में अटक जाएगा। इतनी इतनी सफाई हुई और यहां आके गाड़ी रुक गई। क्यों रुक गई? कि यह बड़ा अच्छा लगा, हमारी एक मान्यता, परंपरागत मान्यता को इसके साथ जोड़ दिया, बड़ा अच्छा लगा, गाड़ी रुक गई। इस अवस्था पर आया, भीतर प्रवाह ऐसा चला कि बहुत आनंद आया, तो बस आनंद आया तो यही परमात्मा है, ये मान्यता को जोड़ दिया, वही गाड़ी रुक गई। बीच की धर्मशाला में रुकना नहीं, तो चलते ही जाना। तो कब तक चलते जाना? यावदेव, तब तक चलते जाना इसी अवस्था में जब तक कि ज्ञान मत्ताये पटिसति मत्ताये अनिश्चितो च विहरति। किसी दार्शनिक मान्यता का आलंबन नहीं है, यथार्थ यथार्थ केवल तथा के सहारे सहारे चलता है तो तथागत बनता है, मुक्त बनता है। कल्पनाओं के सहारे चलता है तो किसी ने किसी कल्पना में उलझ के गाड़ी रोक लेता है अपनी। तो इसलिए अनिश्चितो च विहरति न चय किंच लोके उपादीयति, मुक्त अवस्था पर पहुंच जाता है। ये धातु मनसिकार। अब नव शिवथे का पब्बंग, नौ प्रकार के शमशान के को आलंबन बना करके साधनाएं कराई जाती थी। एक आदमी को हजार समझाओ कि तेरे भीतर शरीर क्या है, तो कहता है बुद्धि से समझता हूं बाबा, ये हड्डी है, मांस है, और क्या पड़ा है इसमें, बुद्धि से समझता हूं, पृथ्वी धातु, जल धातु, वायु धातु, यही है, ध्यान करने बैठता हूं तो क्या करूं, इसका हड्डी का मांस का ध्यान ही नहीं होता। ध्यान करते वो खूबसूरत रूप सामने आता है, पुरुष हो तो नारी का, नारी हो तो पुरुष का, वो रूप सामने आता है और रूप सामने आता है और फिर वो सारा का सारा मेरा विचरण, मेरे विचार उसी उसी में बहक के चले जाते हैं, खींच नहीं पाता, खींचता हूँ फिर उसी में भागते हैं, खींचता हूँ, क्या किया जाए। इतना डूबा हुआ व्यक्ति है, काम वासना के कीचड़ में इतना डूबा हुआ है, कैसे निकाले? तो एक और, माने जितने भी स्थूल बुद्धि का व्यक्ति होगा जिसके लिए सूक्ष्म आलंबन ठीक नहीं है, नहीं कर पाता है, उसको और स्थूलता से आरंभ किया जाए। और करना ये है कि कठिनाई सबसे बड़ी इस व्यक्ति की ये है कि इसको एक तो अपनापे से बहुत चिपकाव होता है किसी किसी को, तो क्या है शरीर इसे देख भाई, और वासनाओं से बहुत होता है तो अपने शरीर से भी चिपकाव, औरों के किसी के शरीर से भी चिपकाव बहुत आ सकती होती है। तो चिंतन द्वारा नहीं बात हुई तो अच्छा खुली आंखों देख तो क्या शरीर है ये, तो और किसी का शरीर देखेगा तो फिर हो सकता वासना ही जागे, तो मुर्दे का शरीर देख। तो तीन तरह के मुर्दा घर कहो भारत में शमशान हुआ करते थे उन दिनों, एक तो जिसमें मुर्दे जलाए जाते हों जैसे आज भी होता है, एक कब्रिस्तान जिसमें गाड़े जाते हों, और एक तीसरे प्रकार का होता था कि जिसमें मुर्दे की लाश फेंक दी गई, अब उसे पशु खाएं, पक्षी खाएं, कीट कीट पतंग खाएं, कोई खाएं उसे, लावारिस लाश है, उसका कोई वारिस नहीं, अथवा बहुत गरीब है, तो किसी दूर स्थान पर उसको कच्चा शमशान कहते थे, कच्चे शमशान में ले जाकर के डाल दी। उस कच्चे शमशान में ऐसे साधक को भेजा जाता था कि वहां पर किसी मुर्दा लाश को देख, बैठा रहे, उसे देखता रहे, देखता रहे, और देखते देखते यही चिंतन कर कि इस लाश की जो अवस्था हुई है, अरे मेरे शरीर की भी यही अवस्था होने वाली है, देर सवेर मेरा शरीर भी ऐसा ही हो जाने वाला है, अथवा किसी अन्य व्यक्ति के शरीर के प्रति आ सकती है, तो चिंतन कर आगे जाकर के उस व्यक्ति का शरीर भी ऐसा ही हो जाने वाला है, ऐसा ही हो जाने वाला है। तो धीरे धीरे चिंतन करना इसलिए आसान हो जाएगा कि आंखों के सामने वो सच्चाई पड़ी है, वो मुर्दा पड़ा है, और इस कदर उसका बिगड़ा हुआ रूप है कि उसके प्रति आकर्षण आ नहीं सकता। एक घटना घटी, कोई एक बहुत खूबसूरत वेश्या और कम उम्र में मर गई, तो बहुत लोग उसके पीछे आसक्त थे, तो कुछ भिक्षु भी भिक्षु बनने के पहले आसक्त रहे होंगे और वो किसी तरह से भी वासना के बाहर नहीं निकलते। तो उसकी लाश लावारिश थी, उसके कोई संतान थी नहीं, उसके साथ इस प्रकार कच्चे शमशान में गिरा दी गई। भगवान ने ऐसे साधकों को भेजा वहां पर, जो इतनी खूबसूरत, इतना खूबसूरत शरीर जिसके लिए तू व्याकुल रहता था, लोग व्याकुल रहते थे, देख क्या हालत, एक दिन देख, देख दूसरे दिन क्या हालत होती है, देख तीसरे दिन क्या हालत होती है। यूं देखते 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 उसके मन में अपने आप जुगुप्सा जागे, उसके मन में निर्वेद जागे, अरे क्या पढ़ाई शरीर में, ऐसा ही होने वाला है, सबका शरीर ऐसा ही होने वाला है। तो इस तरह का प्रयोग, यही नौ प्रकार की शमशान में शव के दर्शन की साधना प्रारंभिक बात है, आगे तो वही होगा। केवल इसी को करके मुक्त नहीं हुआ कोई, प्रारंभिक मनोस्थिति को सुधारने के लिए तो कहा, पुनच परंग भिक्खवे भिक्खु सेयथापि पश्चेय शरीरं शिवतिकाय छड्डितं। वहां पर एक मुर्दे शरीर को जो शमशान भूमि में गिराया गया है उसे देखता है। एकाहमतं, एक दिन पुराना है, कि द्विहमतं, दो दिन का है, कि तीहमतं, तीन दिन का है, उद्धु मातकं, फूल गया है, विनीलिकम, नीला पड़ गया है, विपुब्बक जातं, उसमें पीप चू रही है, कुछ बह रहा है उसमें से, सो इममेव कायं उपसंहरति, ऐसी अवस्था है उस काया की। फिर सोचता है, अयम्पिखो कायो एवं धम्मो, इस काया का भी यही धर्म है, यही लक्षण है, यही स्वभाव है, वो भी ऐसी हो जाएगी। एवं धम्मो एवं भावी ऐसी हो जाएगी, एवं अनती, तो ऐसे होने से बच नहीं सकती, होगी ही, उसकी भी यही अवस्था होगी, एवं अनती तो ती। इस तरह से उस पर चिंतन करता है, देखता है, चिंतन करता है, देखता है, चिंतन करता है, और करते करते फिर उस अवस्था पर आना ही पड़ेगा, विपश्यना करनी है ना। तो अज्जतंग वा काये कायानुपस्सी इत्यादि करते करते अथ कायोति, ये काया है, ये एक प्रकार से मुर्दे को देखना हुआ। कोई आदमी इससे भी नहीं वैराग्य अपने मन में जगा सका, ऐसे देख करके भी जिसके मन में जुगुप्सा नहीं जागी, निर्वेद नहीं जागा, उसके प्रति उससे दूर रहने का, आसक्ति तोड़ने का भाव नहीं जागा, तो फिर पुनच परंग भिक्खवे भिक्खु सेयथापि पश्चेय शरीरं शिवथिकाय छड्डितं, ऐसे शरीर को जो वहां पर पड़ा हुआ है, काके ही वा खज्जमानं, कुलले ही वा खज्जमानं, गिज्जे ही वा खज्जमानं, कंके ही वा खज्जमानं, सुनखे ही वा खज्जमानं, व्यग्ये ही वा खज्जमानं, दीपी ही वा खज्जमानं, सिंगाले ही वा खज्जमानं, विविधे ही वा पाणक जाते ही खज्जमानं। दिन पर दिन वहां पड़े पड़े, किसी कव्य ने खाया कुछ हिस्सा, किसी गिद्ध ने खाया, किसी सियार ने खाया, किसी कुत्ते ने खाया, दीमक ने खाया, किसी और जीवों ने खाया, तो कितना बदरूप, क्या हालत हो गई उसकी। उसको देखता है, उसको देखने से कहीं मन में निर्वेद जागे, अयम पिखो कायो एवं धम्मो, अरे मेरी काया का भी, इस काया का भी यही धर्म है, एवं धम्मो एवं भावी एवं अनति तोपि, ऐसा होते 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 विपश्यना जागे, तो इति अज्जतंग वा काये कायानुपस्सी, और उसी तरह समुदय धम्मानुपस्सी वय धम्मानुपस्सी, और इसी तरह अथ कायोति वा। और किसी को ये भी नहीं हुआ, इससे भी तो और आगे कराया, पुनच परंग भिक्खवे भिक्खु सेयथापि पश्चेय शरीरं शिवतिकाय, शमशान में छड्डितं, छोड़ा हुआ उस मुर्दे के शरीर को, अट्ठिक संखलिकं समंसदोहितं नारु संबंधं, हड्डियों का ढांचा है, खाया गया, इधर से उधर से उधर से खाया गया, हड्डियों का ढांचा है, कहीं कहीं मांस लिपटा है और नसों के जाल से बंधा हुआ है, ऐसे को देखता है तो अठिक संखलिकंग समन सलोहितंग नारू संबंधंग, अथवा अठिक संखलिकंग निमन सलोहितंग, मांस नहीं हड्डी है और केवल नसों से बंधा हुआ है, नारू संबंधंग अथवा अठिक संखलिकंग अपगत मंस लोहितंग नहारू संबंधन, केवल हड्डियों का ढांचा है, अब नसें भी गई मांस भी गया, अथवा अठिकानी अपगत संबंधानी, हड्डियां भी अलग अलग हो गई, ऐसे देखता है कि सारी हड्डियां अलग हो गई, दिशा विदिशा विक्षित्तानी, चारों ओर बिखर गई एक एक हड्डी, विक्षित्तानी अन्येन हत्तठिकंग, हाथ की हड्डी एक ओर बड़ी है, अन्येन पादठिकंग, अन्येन गोम्फक कट्ठिकं, अन्येन जंगठिकं, अन्येन उरुठिकं, अन्येन कटिठिकं, अन्येन फासुकठिकं, अन्येन पिठिठिकं, अन्येन खंदठिकं, अन्येन गीवठिकं, अन्येन हनुकठिकं, अन्येन दंतठिकं, अन्येन शीशकटाहं, यो एक एक हड्डी अलग 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 बिखर गई। इसे देखता है ये अवस्था होने वाली है मेरे शरीर की भी, उस शरीर की जिस पर आ सकती है, यही अवस्था होता है। इममेव कायं उपसंधति अयं पिखो कायो एवं धम्मो एवं भावी एवं अनतीतो, यही अवस्था होगी। फिर उसी ऐसे उसी रास्ते चलता है, अज्जतंग वा काये कायानुपस्सी, बहिद्धा वा काये कायानुपस्सी, समुदय धम्मा वय धम्मा, यूं होते होते अत्थिकायोति, यूं होकर के केवल दर्शन केवल ज्ञान की अवस्थाओं में से गुजरता हुआ मुक्त होता है। और इससे भी किसी को नहीं निर्वेद जागा तो और आगे कराया, पुनच परंग भिक्खवे भिक्खु सय्य था पिपस्य शरीरं शिवतिकाय छड्डितं अठिकानि सेतानि, इस तरह से सफेद पड़ गई हड्डियां हड्डियां, केवल इतनी सफेद पड़ गई, शंख वन्न पटिभागानि, जैसे शंख है उस तरह से सफेद पड़ गई, उसे देखता है। और इससे भी नहीं हुआ तो अठिकानि पुंजकितानि तेरो वस्तिकानि, अनेक वर्ष में वो बिखर गई, टुकड़े टुकड़े हो गई। अठिकानि पूतीनि चुन्नक जायतानि, इससे भी नहीं हुआ तो देखता है चूर्ण हो गया, सड़ करके गल करके केवल उसका चूरा रह गया, चूर्ण रह गया। अरे तो ऐसा ही होने वाला है आगे जा करके, ऐसा ही होने वाला आगे जा करके। सो एवमेव कायं उपसंहरति, ऐसे देखता है उस काया को और फिर चिंतन करता है, अयं पिखो कायो एवं धम्मो एवं भावी एवं अनतीतोपि, ऐसी ही दशा होने वाली है, ऐसी ही दशा होने वाली है। ये प्रतिकूल चिंतन करते 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 गाड़ी पटरी पर आ गई, फिर आगे बढ़ने लगी विपश्यना के साथ। इति अज्जत्तंग वा काये कायानुपस्सी बिहरति, बहिद्धा वा काये कायानुपस्सी बिहरति, अज्जत्त बहिद्धा वा काये कायानुपस्सी बिहरति, समुदय धम्मानुपस्सी वा कायस्मिं बिहरति, वै धम्मानुपस्सी वा कायस्मिं बिहरति, समुदय वै धम्मानुपस्सी वा कायस्मिं बिहरति, अत्थि कायोति वा पनस्सति पच्चुपट्ठिता होति, यावदेव ज्ञानमत्ताय पटिस्सति मत्ताय अनिश्चितो च विहरति न च किंच लोके उपादीयति, एवं पिखो भिक्खवे भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति। यूं भिन्न भिन्न प्रकार से कायानुपस्सन, सभी लोगों को इन सभी प्रकार की कायानुपस्सना में से निकलना होगा, ये आवश्यक बात नहीं है। आवश्यक बात ये जरूर कि सभी लोगों को आतापि संपजानो सतीमा विनय्य लोके अभिज्ञा दो मनस्संग, इसमें से गुजरना पड़ेगा, ये तो साथ रहेगा ही, इसी के सहारे सहारे मुक्त अवस्था प्राप्त होगी। ये नहीं होगा तो चाहे जैसा आलंबन ले लो, वो चित्त को एकाग्र जरूर कर देगा और समाधियां जरूर ले आएगा, लेकिन अंतर मन के विकारों को निकालने में हमारा सहायक नहीं होगा। हमने पहले पर्व को लिया, आनापान के पर्व को लिया, और आनापान के सहारे ध्यान की ओर न जा करके हम संप्रज्ञान की ओर चल पड़े। दूसरे दिन ही किसी को तो पहले दिन ही संवेदना मिलने लगी, किसी को दूसरे दिन मिलने लगी, तीसरे दिन तो सबको मिलने लगती है, तो संवेदना आई कि संप्रज्ञान का काम शुरू हुआ कि बस आगे बढ़ गई विपश्यना की ओर। आवश्यक नहीं कि हम सारे के सारे में से गुजरें, संप्रज्ञान वाला जो पर्व है उसके बीच से तो गुजरना ही पड़ेगा, आगे जाकर के ऊंची अवस्थाओं पर वही पहुंचेगा जो संप्रज्ञान की निरंतरता बनाने में सफल हुआ। कितना कितना सफल हुआ, जितना जितना सफल हुआ उतना उतना आगे बढ़ता चला गया। तो पहला और तीसरा अत्यंत अनिवार्य हमारे लिए, अन्य सारों के लिए तीसरा अत्यंत अनिवार्य। बाकी कोई से भी शुरू कर दे, किसी से शुरू कर दे, कायन उपासना हो जाएगी और मुक्त अवस्था तक पहुंच जाएगा। अब आगे चलें, वेदनानुपस्सना। चार खंड इसलिए किए कि अपने बारे में अपनापे का जो भ्रम है, मैं हूं, ये जो भ्रम है मैं हूं, व्यवहार के लिए तो कहना पड़ता है, नहीं दुनिया का काम नहीं चल सकता। मैं, मेरा, तू, तेरा, वो, उसका, इस तरह से लोक व्यवहार में इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन मैं, मेरा कहकर के जो एक गहरा तादात्म्य स्थापित कर लिया, और तादात्म्य नहीं आसक्ति स्थापित कर ली बहुत बड़ी, और उसकी वजह से विकार पर विकार बनाए जा रहे, उसे तोड़ना है। शरीर में कोई आत्मा नहीं है, संसार को बनाने वाला कोई परमात्मा नहीं है, ऐसी दार्शनिक मान्यता लोगों के सिर पर थोप कर क्या मिलेगा? वैसा ही बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा जैसे शरीर के भीतर कोई आत्मा है, संसार को बनाने वाला कोई परमात्मा है, ऐसी मान्यता थोप करके कुछ नहीं मिला किसी को। भले उसका ऊपर ऊपर का मन गलत रास्ते जाता था, थोड़ी देर के लिए सुधरा, तो वो तो आत्मा नहीं है, ऐसे लोग भी चिंतन करके सुधारते हैं। परमात्मा नहीं है, वो भी चिंतन करके सुधारना एक बात हुई, जड़ों से विकारों को निकालना बिल्कुल अलग बात हुई। तो जड़ों से विकारों को निकालने के लिए किसी दार्शनिक मान्यता का आरोपण कदापि नहीं हो। दर्शन सम्यक हो, माने जो जो अनुभव पर सच्चाई उतर रही है बस उसी के सहारे। तो काया का अनुसंधान करते हुए काया अनुभव पर उतरनी चाहिए, नहीं तो उसकी भी कल्पना करनी शुरू कर देगा, ये हड्डी है, ये मांस है, ये फला, नहीं पहुंचेगा मुक्ति तक। उसकी अनुभव हो, अनुभूति हो, अनुभूति कैसे होगी? उस पर कोई वेदना होगी, कुछ जागेगा, गर्मी जागी, सर्दी जागी, धड़कन जा, अनुभव हुआ ना, उसी को वेदन कहते थे पुरानी भाषा में। स्ववेदन, स्वयं अनुभव करता है, स्वयं अनुभव करता है और जानता है कि देखे तो अनित्य है, उत्पन्न होता है। मुर्दा घर में जाकर के उस मुर्दे को देख करके तो एक थोड़ी देर के लिए वैराग्य जगाने की बात हुई, लेकिन ये अनुभूति वाली बात होगी तो गहराइयों तक वैराग्य जगाने की बात होगी। किससे राग कर रहा हूं रे, किसके प्रति राग जगा रहा हूं रे, क्या है ये, ऐसा अनुभव पर उतरने लगेगा। बुद्धि पर उतारना प्रारंभिक अवस्था में बहुत आवश्यक है। यहां भी कभी कभी कोई आते हैं तो ऐसे कच्चे शमशान तो रह नहीं गए, तो किसी को सलाह देते हैं जा किसी मोर्चरी में जहां पर किसी मुर्दे का पोस्टमार्टम होता हो, देख थोड़ी देर कहाँ जाए बेचारा, कहाँ करे। तो किसी एक विदेशी ने एक सहायता कर दी, कहीं से वीडियो ले आया, पोस्टमार्टम का वीडियो ले आया, मुर्दे को चीरा जाता है तो देखते क्या होता है, भीतर क्या है उसे दिखाई देता है। तो ये चलते हुए बीच में जिन जिन लोगों की ऐसी इच्छा हो अच्छी बात देखें, तो संभवतः कल ही ये मैनेजमेंट वाले 12 से 1 बजे यहाँ पर वो वीडियो दिखाएं, तो जिनको देखना हो देखें किस तरह से ये ऊपर से ऐसा शरीर लगता है, इसके भीतर क्या है, आंखों के सामने देखे। ये सारी बातें केवल प्रारंभ करने की हैं। वो मानस जो हमारा इतना विकृत हो गया कि सही दिशा में चिंतन ही नहीं कर सकता, दर्शन क्या करेगा? लेकिन दर्शन तो तब होगा जब अनुभूति होगी। भारत की पुरानी भाषा में दर्शन रूप को नहीं कहते थे, रूप आकृति को देखना दर्शन नहीं कहलाता था, अनुभवन को दर्शन कहते थे। अनुभव कैसे करेगा? वेदना हुए बिना अनुभव नहीं कर सकता। तो काया को सही तरह से समझने के लिए संप्रज्ञान जो साथ जुड़ा, संप्रज्ञान शरीर की वेदनाओं को जानने को ही कहते हैं, उसके उत्पाद व्यय को कहते हैं। तो ये अलग करके एक उसका वर्ग दिया गया, वेदनानुपस्सना महत्वपूर्ण है, ये हमेशा कायम रहेगा। हर तरह का जो काम करेंगे उसमें वेदनानुपस्सना साथ चलेगी। क्या है? कथन चपन भिक्खवे वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति। कैसे वेदनाओं में वेदनाओं का अनुपस्सी होता है? इद भिक्खवे भिक्खु सुखंग वा वेदनंग वेदयमानु सुखंग वेदनंग वेदयामी तिपजानाति। जिस समय सुख वेदनाओं का अनुभव कर रहा है, तो जानता है सुख वेदनाओं का अनुभव कर रहा हूं, बस और कुछ नहीं, सुख वेदनाओं का अनुभव कर रहा हूं। उसके साथ कोई दार्शनिक मान्यता नहीं जोड़ेगा, जैसे शरीर के साथ कोई दार्शनिक मान्यता नहीं जोड़ी, शरीर है, इसी तरह से वेदना है। क्या है वेदना? तो जिस वक्त सुखद है तो सुखद है। ऐसे ही दुखंग वा वेदनंग वेदयमानो दुखंग वेदयामीति भजानाति, दुख वेदना है, इस तरह से उसको जानता है। अ दुखम सुखंग वा वेदनंग वेदयमानो अ दुखम सुखंग वेदनंग वेदयामीति भजानाति, असुख अदुख वेदना है। आप 2500 वर्षों में वेदना शब्द केवल दुख के लिए इस्तेमाल होने लगा तो मजबूरी हमें संवेदना शब्द इस्तेमाल करना पड़ा। केवल वेदना कहेंगे और सुखद वेदना चलेगी तो कहेगा हमको तो वेदना आई नहीं अभी तक, हमको तो वेदना, वो तो दुख वेदना ढूंढेगा और चल रही है सुख वेदना, तो संवेदना शब्द दिया, सुखद संवेदना, दुखद संवेदना, न्यूट्रल संवेदना, इस प्रकार समझाया। ये पुरानी भाषा है, ऐसे ही समझना चाहिए। सुख वेदना को सुखद संवेदना, दुख वेदना को दुखद संवेदना, असुख असुख संवेदना को असुख अदुखद संवेदना, यूं समझना चाहिए। ये असुखद अदुखद इसके बारे में भी थोड़ा समझ लेना चाहिए। एक तो आदमी काम शुरू करते ही ऐसी अनुभूतियां होने लगी जो बड़ी दुखद है, साफ मालूम होती है दुखद है। ऐसी अनुभूतियां होने लगी साफ मालूम हुई सुखद हैं, और होते होते कुछ अनुभूतियां ऐसी हुई कि अरे भाई इसको सुखद भी नहीं कह सकते, इसको दुखद भी नहीं कह सकते। ऐसा भी आरंभ में होता है, इसके लिए ये शब्द नहीं आया है। ये ध्यान की बहुत गहरी अवस्थाओं में एक तरह की असुखद अदुखद संवेदना होती है। शुरू शुरू में जो दुख होता है, पीड़ाएं होती हैं, करते 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 निकल जाती हैं। साधना करते करते भारीपन निकल गया, पीड़ा निकल गई, गर्मी निकल गई, ये सारे निकले। और फिर बहुत आनंद की लहरें आई, पुरानी भाषा में कहें तो प्रीति प्रमोद जागा, बड़ी लहरें सारे शरीर में प्रवाह चल रहा है, बड़ा अच्छा लगता है, इतना रोमांच, इतना पुलकन, ये सारा कुछ चल रहा है तो सुखद है। आगे बढ़ते 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 ये प्रवाह जो इतना तेज था, इतना धीमा पड़ गया, इतना सूक्ष्म हो गया कि केवल प्रशब्दी है, प्रशांति है, नहीं कह सकते कि सुख है, प्रशांति जरूर है। वो सुख के साथ कल्पना करता है जो पुलक रोमांच में आया था, तो कहता वो सुख तो नहीं है, ये दुख है ही नहीं, दुख भी नहीं है, वो सुख भी नहीं है, तो क्या है? तो सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, बड़ी प्रशांत अवस्था है, बड़ी प्रशांत अवस्था है। उसको उन दिनों की भाषा में, भगवान की शिक्षा में असुख अदुख वेदना कहा। वहां खतरा ज्यादा है, तीनों जगह खतरा है। जब दुखद संवेदना चलती है तो खतरा यह है कि पुराना मानस का स्वभाव दुखद संवेदना के प्रति द्वेष जगाने का, जगाया जाएगा। और जब सुखद चलती है तो पुराना मानस का स्वभाव उस सुखद संवेदना के प्रति राग जगाने का, जगाया जाएगा। और ये अवस्था आई कि विकार निकलते निकलते निकलते, चाहे ध्यानों के द्वारा आई, चाहे विपश्यना के द्वारा आई, उन गहराइयों में पहुंचा जहां प्रशब्दि है, प्रशांति है, प्रशब्दि है, प्रशांति है। वहां पर कठिनाई ये आई कि मोह के संस्कार बनाने लगा, मिथ्यात्व के संस्कार बनाने लगा, धोखे में आ गया कि मैं अंतिम अवस्था पर पहुंच गया, यही मुक्त अवस्था है, ये नित्य है, ये शाश्वत है, ये ध्रुव है। तो जिस प्रकार वो दोनों खतरनाक थे, उतना ही खतरनाक ये अवस्था होती है। बहुत आगे जाकर ऐसी अवस्था आती है, किसी किसी साधक को 20 दिन के 30 दिन के लंबे शिविरों में आने लगती है, आती है, तो बार बार चेतावनी देते हैं कि जांच करता रहे, अभी भी शरीर और चित्त का क्षेत्र ही है ना, इसके परे का तो नहीं ना, जांच करता रहे, तेरी इंद्रियां काम कर रही है ना, इंद्रियों के परे का क्षेत्र नहीं है ना, इंद्रियां काम कर रही है, शरीर चित्त का क्षेत्र है, मत इसको नित्य शाश्वत ध्रुव मान ले, नहीं फिर बीच की धर्मशाला में अटक गया, अभी लक्ष्य बहुत दूर है, बीच की धर्मशाला बड़ी सुहावनी लगी, बड़ी अच्छी लगी, बड़ी आरामदेह लगी, और बस हम तो पहुंच गए अपने मंजिल पर, वही अटका रह जाएगा। तो ये तीनों के तीनों की विपश्यना करनी होती है, इन तीनों को ये अनित्य हैं, ये नश्वर है, ऐसा अनुभूतियों से जानना पड़ता है। तो इसलिए आगे कहा, सामिसंग वा सुखंग वेदनंग वेदयमानो सामिसंग सुखंग वेदनंग वेदयामीति पजानाति, निरामिषंग सुखंग वेदनंग वेदयमानो निरामिषंग सुखंग वेदनंग वेदयामीति पजानाति सामिषंग दुःखंग वेदनंग वेदयमानो सामिषंग दुःखंग वेदनंग वेदयामीति पजानाति निरामिषंग दुःखंग वेदनंग वेदयमानो निरामिषंग दुःखंग वेदनंग वेदयामीति पजानाति सामिषंग अदुःखं सुखंग वेदनंग वेदयमानो सामिषंग अदुःखं सुखंग वेदनंग वेदयामीति पजानाति निरामिषंग अदुःखं सुखंग वेदनंग वेदयमानो निरामिषंग अदुःखं सुखंग वेदनंग वेदयामीति पजानाति। उन्हीं तीनों को सुख वेदना दुख वेदना असुख अदुख वेदना को और दो भागों में बांटा, सामिष है निरामिष है। सुख वेदना भी सामिष है निरामिष है, दुख वेदना भी सामिष है निरामिष है, अदुख असुख भी सामिष है निरामिष है। क्या सामिष है क्या निरामिष है? आज की भाषा में तो सामिष है तो नॉन वेजिटेरियन है, निरामिष है तो वेजिटेरियन है। बात वही है, अशुद्ध है, जैसे भोजन अशुद्ध है, भोजन शुद्ध है, अच्छा है बुरा है। तो वो वेदनाएं, वेदना अपने आप में बुरी या भली नहीं होती, हम वेदनाओं को किस प्रकार ग्रहण कर रहे हैं। दुखद वेदना आई और हमने उसके प्रति द्वेष जगाया तो अपना भव चक्र जगाया, हमने अपने मन को मैला करने का काम शुरू कर दिया। सामिष ही सामिष, सामिष ही सामिष। सुखद वेदना आई और हमने राग जगाया, हमने भव चक्र को बढ़ाने का काम शुरू कर दिया, अपने मन को मैला करने का काम शुरू कर दिया। सामिष ही सामिष, सामिष ही सामिष। असुख अदुख बड़ी गहराई से संवेदना आई और हमने उसी को बस यही नित्य है शाश्वत है ध्रुव है ऐसा कह करके मोह के संस्कार बनाने शुरू करे, अविद्या के संस्कार बनाने शुरू किए, भव चक्र बनाना शुरू किया, हम फिर अपने मन को मैला करने लगे। सामिष ही सामिष। और उसी प्रकार की तीनों संवेदनाएं आई, संवेदनाएं उसी प्रकार की हैं। दुखद आई, हमने देखा अरे अनित्य है भाई, ये तो अनित्य है भाई, हमने कोई उसके प्रति द्वेष नहीं बनाया, तो निरामिष हुई, हमारे चित्त को अपने मैल से दूर करने में सहायक बन गई। वो आदत जो हमारी मैली मैल पैदा करने की थी वो पलटने लगी, हमने नया मैल चढ़ाया नहीं, पुराने निकल कर नष्ट होने का रास्ता खोल दिया, तो सामिष हुई से निरामिष हुई। इसी प्रकार सुखद संवेदना आई, हमने राग नहीं जगाया, निरामिष हुई। अदुख असुख शांत संवेदना हुई, हमने मोह के संस्कार नहीं जगाए, निरामिष हुई। इस प्रकार वही संवेदनाएं सामिष भी निरामिष भी जो हमें इस काम भोग के संसार में लोट पलोट लगाने में सहायक बन जाती है वो सामिष ही सामिष है, जो हमें इस काम भोग के संसार से बाहर निकालने में सहायक होती है वो निरामिष ही निरामिष है। इस कदर साधक जांचता रहेगा संवेदना तो जागी, ये अपने वश की बात नहीं कि संवेदना कैसी जागे, दुखद भी जाग सकती है सुखद भी जाग सकती है, अनेक कारणों से दुखद जाग सकती है सुखद जाग सकती है, असुखद असुखद जाग सकती है, लेकिन उसको हम निरामिष बना रहे हैं कि सामिष बना रहे हैं ये हमारे हाथ की बात है। अगर हम संसार चक्र में पड़े हुए काम भोग में पड़े हुए सुखद संवेदना प्राप्त करते हैं तो सभी तो सुखद संवेदना अनुभव करते ही है ना, करते हैं और ज्यादा काम भोग में लिप्त होते हैं, सुखद संवेदना अनुभव होती है और ज्यादा लिप्त होते हैं, तो निकलेगा कैसे? सामिष सामिष हुई ना। काम सुखद वैसी ही हमें ध्यान करते हुए अनुभव होती है ध्यान करते हुए, और फिर हम काम वही करें फिर राग ही जगाएं तो सामिष हो गई, और ध्यान करते हुए वैसी संवेदना आई सुखद हमने नहीं राग जगाया तो निरामिष हो गई। उसको सामिष बनाना कि निरामिष बनाना ये अपना काम, ये विपश्यना के बल पर हम उसे निरामिष ही निरामिष रखेंगे। जैसे ही सामिष हुई के होश जगाया, सामिष हुई के होश जगाया, कहाँ जाने लगे क्या करने लगे, तो प्रतिक्रमण किया, गलत रास्ते जाने लगे फिर प्रतिक्रमण किया पीछे हट गए, यूं करते करते अपने मानस के स्वभाव को पलटते चले जाएंगे और पलटते पलटते उस अवस्था पर पहुंचेंगे। इति अज्जत्तंग वा वेदनासु वेदनानुपस्से विहरति बहिद्धा वा वेदनासु वेदनानुपस्से विहरति अज्जत्त बहिद्धा वा वेदनासु वेदनानुपस्से विहरति। तो अज्जत और बहिद, एक तो भीतर की वेदनाएं संवेदनाएं ऊपर की संवेदनाएं, फिर एक साथ ऊपर भीतर और बाहर की संवेदनाएं, ये अर्थ। और दूसरा एक अर्थ उस दिन जैसे समझाया कि बाहर के किसी आलंबन का हमारे शरीर पर स्पर्श होना, वेदना तो शरीर पर ही होगी, आलंबन कहीं बाहर से आया कोई शब्द कोई रूप कोई गंध कोई रस इत्यादि और उससे जो संवेदना हुई उसको हम बहिद्ध कहें, भीतर ही भीतर किसी आलंबन पर संवेदना जागी, उसे हम अज्जत कहें, यूं भी कह सकते हैं। पर मूल बात यह कि 3.5 हाथ की काया के भीतर बाहर जो संवेदना हुई किसी कारण से हुई, हम उसे निरामिष रखेंगे, सामिष नहीं होने देंगे। और वो तब होगा जबकि समुदय धम्मानुपस्सी वा वेदनासु विहरति, हर वेदना के समुदय को देखेगा। वै धम्मानुपस्सी वा वेदनासु विहरति, उसके व्यय को देखेगा और उस अवस्था पर पहुंचेगा जहां समुदय वै धम्मानुपस्सी, दोनों को एक साथ उदय व्यय उदय व्यय उदय व्यय एक साथ भंग अवस्था हो रही है, इसको देखेगा और तब समझेगा अति वेदनाति, अरे वेदना है, बस वेदना है, वेदना को और क्या कहूं, अच्छा कहूं क्या बुरा कहूं, क्या अच्छा कहूं क्या बुरा कहूं, ये वेदना मैं हूं कैसे कहूं मैं हूं, ये वेदना मेरी है कैसे कहूं मेरी है, ये वेदना मेरी आत्मा है कैसे कहूं मेरी आत्मा है, तो न मैं है न मेरा है न मेरी आत्मा है, इसका कोई व्यक्तित्व ही नहीं है। जैसे शरीर का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है, टुकड़े 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 करके देखें, तरंगे ही तरंगे तरंगे ही तरंगे, हर तरंग अपने आप में अलग, हर तरंग अपने आप में अलग, ऐसे हर वेदना अपने आप में अलग, तरंग ही तरंग तरंग ही तरंग, इसमें मैं क्या इसमें मेरा, अरे व्यवहार के लिए ठीक कहना पड़ता है लेकिन वास्तविकता की ओर जा रहे हैं, तथ्यों की ओर जा रहे हैं, तो मैं नहीं मेरा नहीं मेरी आत्मा, वेदना वेदना है, बस वेदना वेदना है। अति वेदनाति वा पनस्स सति पच्चुपट्ठिता होती, अब जो जागरूकता है वो इस सच्चाई पर स्थित हो गई कि केवल वेदना है वेदना है। और वो करते करते यावदेव ज्ञानमत्ताय पटिस्सतिमत्ताय अनिश्चितो च विहरति न च किंच लोके उपादीयति एवं पिखो भिक्खवे भिक्खु वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति, इस प्रकार ये वेदना की उपासना करता है। बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, कायानुपासना करते हुए भी हमें वेदनाओं का ध्यान करना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो संप्रज्ञान नहीं होगा। वेदना की विपश्यना करते हुए तो वेदना ही देखनी और देखने को है ही क्या, आगे चलेंगे तब देखेंगे। चित्त का ध्यान करेंगे तो हो नहीं सकता जब तक कि उस पर कोई धर्म न जागे, माने उस पर कोई ना कोई विकार विचार कोई भावावेश कुछ न कुछ जागेगा, जागा तो उसको जान दें, उसको धर्म कहा, धारण करता है चित्त उसे धारण करता है, और जो धारण करता है प्रकृति का नियम है, चित्त जो कुछ धारण कर ले शरीर पर एक संवेदना के साथ उसका बहाव शुरू हो जाता है। फिर हम वेदना पर आ गए, चित्त और चित्तानुपासना करते हुए धर्म और धम्मानुपासना करते हुए भी ये शरीर पर होने वाली संवेदनाओं को नहीं भूल सकते क्योंकि इसको भूल गए तो संप्रज्ञान को भूल जाएंगे, संप्रज्ञान को भूल जाएंगे तो समाधियां मिलेगी, बहुत गहरी समाधियां बहुत ऊंचे समाधियां मिल जाएंगी, आठों ध्यान तक प्राप्त हो जाएंगे, मुक्ति नहीं प्राप्त होगी। संप्रज्ञान को साथ जोड़ना ही है, इसलिए ये वेदनानुपासना बड़े महत्व की है और काया की वेदना बहुत महत्व की है। वेदना कई प्रकार की समझाई, 5 प्रमुख समझाई गई, काया की सुखद वेदना, काया की दुखद वेदना और काया की असुखद अदुखद वेदना। और मन में सुख जागा, मन में सुख जागा कि मन में दुख जागा, तो मन की जो सुखद वेदना उसे सोमनस्य वेदना कहा और मन की जो दुखद वेदना उसे द्वामनस्य वेदना कहा। यहां काम करवाते हुए सोमनस्य द्वामनस्य का नाम नहीं दिया, केवल सुखद वेदना दुखद वेदना असुखद अदुखद वेदना, तो शरीर की ही वेदना है। मन तो साथ जुड़ा ही है, मन अगर नहीं साथ जुड़ा होता तो कौन अनुभव करे, मन ही अनुभव कर रहा है, मन का एक हिस्सा जिस वेदना जिसका अंग है, एक 4 स्कंदों में से 1 स्कंद वो अपना काम कर रहा है, वेदना ही अनुभव कर रहा है, लेकिन कर रहा है शरीर पर क्या हो रहा है उसे। इतनी बात करके अब कुछ प्रश्न आए हैं, समय बहुत कम, थोड़े से प्रश्न आज ले लें, सारे प्रश्नों का उत्तर तो देना संभव भी नहीं और आवश्यक भी नहीं। कुछ लोगों के प्रश्न तो अपने व्यक्तिगत प्रश्न है, तो मिल करके ही भले उनका समाधान हो, औरों से कोई मतलब नहीं रखता। कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि जो सबसे संबंध रखते हैं, उनमें से थोड़े से प्रश्न उठाएं। केवल आनापान से क्या सारे विकार जड़ तक दूर हो सकते हैं? बिल्कुल, आनापान हमको संप्रज्ञान से जोड़ देगा तो जड़ तक निकल जाएंगे, और आनापान केवल हमको सांस की जानकारी तक ही रखेगा तो हमको 4थे ध्यान तक ले जाएगा और उसके बाद का रास्ता खुल जाएगा, 8ों ध्यान तक चले जाएंगे। तो हम आनापान का प्रयोग कैसे करते हैं उस पर निर्भर करता है। अंतिम लक्ष्य में दृष्टा, दृश्य और दृष्टि एक बनती है, यह मैं मानता हूं और जानता हूं, लेकिन मन में प्रश्न उठता है कि बिन दृष्टा दृश्य कैसा संभवित है। बिल्कुल ठीक, ठीक वैसे ही कि जैसे निर्वाण कैसा है, मुक्ति कैसी है, वो बिना अनुभव के कोई समझ नहीं सकता, उसको हजार समझाएंगे भी तो उसकी कल्पना करके रह जाएगा वो। तो उसके लिए केवल कहने वालों ने, जिन जिन को अनुभव हुआ, नेति नेति नेति, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि संसार की जितनी बातें देखता है उससे तुलना करके देखता है, तो ऐसा नहीं है। तो क्या महाराज वहां कुछ नहीं तो अंधकार होगा? अरे नहीं, अंधकार नहीं है, वहां पर अंधकार नहीं है तो अंदाज लगाया प्रकाश होगा, तो प्रकाश होगा तो सूर्य जैसा प्रकाश होगा क्या? अरे नहीं, सूर्य जैसा प्रकाश नहीं है। तो चंद्रमा जैसा होगा? अरे नहीं। तो तारों जैसा होगा? अरे नहीं। तो जुगनू जैसा होगा? अरे नहीं नहीं नहीं, तो अंधकार भी नहीं है, प्रकाश भी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, तो क्या है? नहीं बता पाएगा। जिसने बताने का प्रयत्न किया, समझ लेना चाहिए कि वो उस अवस्था तक पहुंचा नहीं, क्योंकि समझेगा कैसे? थ्री डायमेंशन की दुनिया में रहने वाले व्यक्ति को फोर्थ डायमेंशन की अनुभूति हो जाए, वो कैसे लोगों को समझाएगा फोर्थ डायमेंशन कैसा होता है? तीन ही आयाम में सारा जीवन अपना बीता, लोगों का बीत रहा है, चौथा आयाम भी कोई हो सकता है, कैसे लोग समझेंगे? तो वो तो अनुभव ही करके जानेगा, जो अनुभव करेगा वही जानेगा। इसी प्रकार ये है अभी इंद्रियों की अवस्था, वो तो इंद्रियातीत अवस्था है, इंद्रियों के परे अनुभव होता है तो इंद्रियों द्वारा नहीं समझाया जा सकता। ये इंद्रिय की अवस्था है जहां पर केवल दर्शन रह जाएगा, केवल ज्ञान रह जाएगा, अभी इंद्रियातीत में नहीं पहुंचा, उसके किनारे जा लगा। लेकिन वो अवस्था इतनी सूक्ष्म है कि सामान्य व्यक्ति जो उसके समीप तक गया नहीं, उसके पल्ले नहीं पड़ेगा, हजार समझाए। एक अवस्था है जहां पर दृष्टा समाप्त होता ही है, ज्ञाता समाप्त होता ही है। अगर दृष्टा कायम रहा, अगर ज्ञाता कायम रहा, तो मैं कायम रहा, और मैं कायम रहा तो अवस्था आने वाली नहीं है। सारे अहंकार पिघलेंगे, वो अवस्था आएगी तब डुबकी लगेगी। जब तक अहम भाव कायम है, जब तक आत्म भाव कायम है, मैं हूं मैं हूं, मैं कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं भोगता नहीं, मैं केवल दृष्टा हूं, लेकिन मैं हूं, तब तक उस किनारे तक भी नहीं पहुंच पाएगा। ये मैं पिघलते 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 वो अवस्था आएगी जिसको अनात्म कहा, आत्मभाव नहीं रह गया। ये कोई फिलोसफी की बात नहीं, लेना देना नहीं फिलोसफियों से। आत्मभाव नहीं रह गया, अहम भाव नहीं रह गया, अहम मम दोनों पिघल गए। वो अवस्था आए तो अनुभूति द्वारा ही जानेंगे, शब्दों में न समझाई जाएगी न कोई समझ पाएगा। अत्यंत बहिर्मुख लोग हैं जो कि आनापान पर सहज काम करने में सक्षम नहीं है, क्या ऐसे लोग विपश्यना में प्राणायाम की सहायता नहीं ले सकते हैं? क्या प्राणायाम विपश्यना की प्रक्रिया में हानिकारक एवं बाधक है? आपने विपश्यना शिविर के तीसरे दिन के दोपहर बाद के इंस्ट्रक्शन में भी यह कहा है कि जिन्हें अब तक कोई भी संवेदना न मिली हो, वे आधा मिनट के लिए सांस रोक लें। ये सांस रोकना तो सांस की कसरत ही है। वैसे योग दर्शन, मनुस्मृति आदि महत्वपूर्ण ग्रंथों में प्राणायाम को शरीर और मन के सूक्ष्म बलों को भूनने वाला सहायक एवं उपयोगी माध्यम कहा है, अतः कृपया आप ये बताइए कि विपश्यना में इसकी सहायता लेना हानिकारक है कि लाभदायक? ये प्रश्न मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि आपके स्थूल मानस के साधकों के लिए सांस रोक लेने की बात कहते हैं। जो बात किसी इक्के दुक्के लोगों पर लागू पड़े, वो बात एक विधि के रूप में चल पड़े, तो वही हालत हो जो कि भारत की हुई। कराया होगा किसी महापुरुष ने यह कि तुझे कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मालूम होता, तो थोड़ी सी देर सांस रोक। सांस रोक का मतलब चित्त एकाग्र हुआ ना, हम सांस ही नहीं ले रहे हैं तो अपने आप मन वहीं लग गया, वहां लग गया तो कोई अनुभूति हुई। कर थोड़ी देर, कर ऐसे, और उसे को पागलों ने एक विधि बना दिया। तो विधि तो चली एक, उसको लेकर न जाने कितने प्रकार के प्राणायाम चले। 2500 वर्ष पूर्व और 2500 के बाद, 400 वर्ष के बाद जो पातंजलि योग लिखा गया, तब तक इतने तरह के प्राणायाम नहीं थे, इतने तरह के आसन नहीं थे। अब बेचारे पातंजल के नाम पर ही इतने प्राणायाम, इतने प्रकार के प्राणायाम, इतने प्रकार के आसन जो कि बहुत बाद के लोगों ने बनाए, वो सारे के सारे इस विपश्यना को ले डूबे। इस विपश्यना को नहीं ले डूबे, बेचारे पातंजल को भी ले डूबे। वो क्या कराना चाहता है वो तो गौण हो गया। अब केवल आसन, भिन्न भिन्न प्रकार के आसन करो, भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणायाम करो, उससे ये लाभ होगा, ये लाभ होगा, निश्चित रूप से लाभ होगा, उसमें कोई संदेह नहीं। आध्यात्मिक लाभ नहीं है, जड़ों से विकारों को निकालने का लाभ नहीं है, बाधक बन गया। मन बड़ा चालबाज है, वो अपने विकारों को निकलने नहीं देना चाहता, क्योंकि जैसे हम बार बार कहते हैं कि ये विकार हमारे पास मेहमान बन के आए, घर के मालिक हो गए, तो कोई न कोई रास्ता ढूंढेंगे जिससे काम बंद हो जाए, विपश्यना काम बंद हो जाए। तो कोई छोटा मोटा रास्ता, जरा सी गली मिली कि ढोल पीटना शुरू किया, ये बढ़िया है। मार के बारे में ये कहा गया कि साधक जब उन्नति करता है तो मार ये देखते रहता है कि ये किस तरह फिसलेगा, और बातों में नहीं फिसलता। तो कोई कोई काम उससे ऐसा करवा देगा जो कि बहुत मामूली काम है, और उसमें ऐसी सफलता देगा कि ढोल पीटेगा फिर, अरे बहुत बढ़िया, देख तेरी उन्नति, देख तेरी उन्नति। उसके बाद साधक के, हाँ देख मेरी उन्नति, देख मेरी उन्नति, मैं कितना आगे बढ़ रहा हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कैसा हूँ। छूट गई विपश्यना, पड़ गया गलत मार्ग, बहुत खतरनाक है। इसके साथ कोई विधि जुड़ने न दे, भारत कंगाल इसीलिए हुआ, अध्यात्म में कंगाल हो गया भारत, इसीलिए हो गया, जड़ें निकालने वाले काम छूट गए भारत की। ऊपरी ऊपरी बातें, ऊपरी ऊपरी बातें, कोई ध्यान भी तो ऊपरी ऊपरी ध्यान, गहराई तो जाने का काम समाप्त हो गया। तो ऐसी कोई बात भूल कर भी न लगने दे। एक आध बार हमारे मन में ऐसा आया कि हम रोक करके देखें तो सही, ठीक इसी प्रकार की सांस बहुत धीमा हो गया, नहीं मालूम होता है, तो एक आध बार जरा सा तेज कर लिया, उसका रूप क्या हुआ, भस्त्रिका प्राणायाम पर पहुंच गए। इतने जोरों जोरों से सांस लो और थका लो अपने आप को, ब्रह्मा में भी चलती एक प्रक्रिया इसी प्रकार की, ये बिगड़े रूप है विपश्यना के, आनापान के बिगड़े हुए रूप, कि क्योंकि कह दिया गया जब तुम्हारा सांस मालूम ही नहीं होता तो छड़ा से जरा सा तेज सांस ले लो, बस मार ने ढोल पीटना शुरू किया, जोर से सांस ले रहे तो जोर से सांस ले रहे, तेरे को नहीं मालूम होता ना, तो जोर से सांस ले रहे, जोर से सांस लिया, जोर से सांस लिया। तो बर्मा में एक विधि चल पड़ी, और यहां भी एक व्यक्ति ने चलाई, जोर से सांस लो, जोर से, इतने जोर से सांस लो, 100 आदमी बैठे हुए ध्यान करते होंगे, जोर से सांस, जोर से सांस, 1 मील दूर तक उनके सांस की आवाज आए, जैसे कोई फैक्ट्री चल रही है, इतने जोर से सांस होगा, नाक से पानी गिरेगा, आंख से पानी गिरेगा, थक के चूर हो जाएंगे, 1 घंटा के बाद कहेंगे अब लेट जाए, शरीर को ढीला छोड़, शवासन में लेट जा, अरे बड़ा सुख मालूम होगा, इतनी देर मन को थकाया जोर जोर से सांस लेकर के, अब लेटा तो बड़ा आनंद आया। बस यही आनंद है, ये आनापान ऐसा आनंद दिलाने वाली है, उलझ गए ना, कहाँ आनापान कहाँ ले जाने वाली थी और कहाँ पहुंचा दिया। भटकना नहीं कहीं, जो विधि जैसे मिली उसमें अपनी ओर से भूल कर कुछ नहीं जोड़ लेना। जिसको दुकान खोलनी हो अपनी, वो तो जरूर देखेगा, थोड़ी सी बात यहाँ की ले ली, थोड़ी सी वहाँ की ले ली, और फिर अपना आरोपण लगाया, हमारी मान्यता ये कहती है, हमारी परंपरा ये कहती है, जोड़ दिया इसे, और जो कुछ लाभ इसका थोड़ा सा मिला उसको अपनी मान्यता का लाभ बताने लगा। ऐसे करते हैं करने वाले, करें ये पागलों का काम, हम क्या करें, हमारा काम तो देने का, हमको तो शुद्ध रूप से एक विद्या मिली, इस देश में शुद्ध रूप से ही बांटेंगे, और जो जो समझदार लोग हैं उसको शुद्ध रूप में रखेंगे, अपने ही कल्याण के लिए नहीं, पीढ़ियों तक लोक कल्याण हो इस दृष्टिकोण से। तो बिगड़ने नहीं दें, कुछ इसमें जुड़ने नहीं दें, बहुत बड़ी बाधा आ जाएगी। धर्म बड़ी कठिनाई से इस देश में आया है, 2000 वर्ष के अंधेरे को दूर करने के लिए आया है, तो उसको अपने शुद्ध रूप में रखेंगे तो ये आशा कर सकते हैं कम से कम 200-400-500 वर्ष तक तो इस देश का कल्याण करेगा, बाहर के देशों का कल्याण करेगा, इसकी शुद्धता टूटने न पाए।
सर्व मंगलं भवतु सर्व मंगलं भवतु